वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। सुबह की खातिर जुग जुग से हम सब मर मर कर जीते हैं, जिस सुबह के अमृत की धुन में हम जहर के प्याले पीते हैं, प्यासी रूहों पर एक दिन तो करम फरमाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। माना के अभी तेरे मेरे अरमानों की कीमत कुछ भी नहीं, मिट्टी का भी है कुछ मोल मगर इंसानों की कीमत कुछ भी नहीं, इंसानों की इज्जत जब झूठे सिक्कों में ना तोली जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी।
किसी जंगल में तीन बड़े बड़े वृक्ष थे और हर एक वृक्ष का एक स्वप्न था। पहला वृक्ष सोचता था कि मैं ऐसा एक संदूक बनूं कि जिसमें बहुमूल्य चीज इस संसार की रखी जाए, हीरे मोती जवाहरात। दूसरा वृक्ष सोचता था कि मुझसे एक ऐसा नाव बने, इतना विशाल नाव, जहाज, शिप, जो समुद्र की लंबी लंबी यात्रा करे और जिसमें इस संसार के महत्वपूर्ण व्यक्ति बैठे। तीसरा वृक्ष सोचता था मैं आकाश में इतना ऊंचा जाऊं, इतना ऊंचा जाऊं कि सब लोग मुझे देखें और जो मुझे देखे उनको भगवान की याद आए। थ्री ड्रीम्स, थ्री ट्रीज, और एक दिन एक लकड़हारा उस जंगल में प्रवेश करता है और वो वृक्ष खुश होते हैं। पहले वृक्ष के पास वो जाता है और उसे काटने लगता है और ये वृक्ष खुश होता है कि अब ये मुझे वो लकड़ी की वो संदूक मैं बनूंगा और मुझ में बेशकीमती हीरे जवाहरात रखे जाएंगे। दूसरे पेड़ के पास वो लकड़हारा जाता है तो दूसरा वृक्ष भी खुश होता है कि अब मैं एक विशाल सा जहाज बनूंगा। और वो लकड़हारा सोचता भी है कि मैं इसको किसी को बेचूंगा ताकि वो जहाज बनाए। तीसरे वृक्ष के पास जाता है तो उसके मन में कुछ नहीं होता है और तीसरा वृक्ष रोते रहता है क्योंकि उसका तो स्वप्न था सर्वोच्च बनना, सबसे ऊंचा बनना, और ये लकड़हारा अब उसे काट रहा है, उसके टुकड़े टुकड़े करता है। पहला जो वृक्ष होता है उसने सोचा था कि मुझसे वो संदूक बने, परंतु वो लकड़हारा उसे जो घोड़ों का तबेला है उसके मालिक को बेच देता है और वो घोड़ों या पशुओं के चारा के लिए, मवेशियों के चारा के लिए वो एक संदूक बना देता है जिसमें कचरा और चारा रखा है। वृक्ष बहुत दुखी होता है, उसने सोचा क्या था और हुआ क्या। दूसरा वृक्ष जिसने सोचा था कि मैं एक महान शिप बनूं, वो लकड़हारा उसे मछुआरों को बेच देता है और मछुआरे एक छोटी सी नाव बना देते हैं बस। तीसरा वृक्ष जिसने सोचा था कि मैं बहुत ऊंचा बनूं, उसे तो बस अंधेरी काल कोठरी में उसके टुकड़े कर वो लकड़ी के वो टुकड़े डाल दिए जाते हैं। वर्ष वर्ष बीत जाते हैं, वो वृक्ष तो अपने स्वप्न के बारे में भी भूल जाते हैं। और एक दिन फिर एक युगल वहां रहने आते हैं। उस तबेले के पास और एक इमैकुलेट कंसेप्शन, एक पुत्र का जन्म होता है, उसको रखने के लिए भी कुछ नहीं है। तो उसको उसी संदूक, वो संदूक तो नहीं है, वो जो चारा रखने का है उसमें रखा जाता है। एक झील में नाव तूफान आता है, उसमें कुछ लोग हैं, डर जाते हैं, सोए हैं, उठ जाते हैं। वो पानी नाव में घुस रहा है, उसमें एक व्यक्ति सोया है। वो उठता है और कहता है पीस, शांत, और तूफान रुक जाता है। एक व्यक्ति है जिसे मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई है और उसे अपनी लकड़ी खुद ढोने के लिए कहा गया है और फिर लटका दिया। तीनों ही वृक्ष जो थे उनके स्वप्न पूरे हुए, पर उस रीति से नहीं जिस रीति से उन्होंने सोचा था। और जो पहला वृक्ष था उसका क्या बना, वो घोड़े का और मवेशियों का तबेला, वहां पर जिसने जन्म लिया वो जीसस क्राइस्ट था। क्रिश्चियन स्टोरी है जिसमें कहा गया वो किंग ऑफ किंग्स है, उससे अधिक मूल्यवान और क्या है। उस वृक्ष ने सोचा था ऐसा संदूक बनूं कि जिसमें हीरे जवाहरात रखे जाए। जीजस का जन्म कहाँ हुआ? उसी तबेले के पास। डेविड, जोसेफ और मैरी वहां आते हैं क्योंकि वहां का जो राजा है बहुत क्रूर है, हिरोड, जैसे यहां दिखाया है भारत में कंस का शासन है। देवकी और वसुदेव जेल में, वहां कृष्ण का जन्म। उसी तरह हिरोड ने भी कहा है कि जो जो बच्चा जन्म लेगा सबको मार दिया जाए, वहां क्राइस्ट का जन्म है। और वो जो संदूक है, वो जो लकड़े का बना हुआ है, वो पहला वृक्ष है जिसने सोचा था कि मैं ऐसा गोल्डन चेस्ट, ट्रेजर चेस्ट बनूं जिसमें इस संसार का सबसे बहुमूल्य खजाना रखा जाए। इससे अधिक बहुमूल्य और क्या हो सकता है? दूसरे वृक्ष ने सोचा था मैं एक ऐसा जहाज बनूं जिसमें किंग ऑफ किंग बैठे, गलीली की झील में। जीसस क्राइस्ट जा रहा है अपने 12 शिष्यों के साथ और अचानक तूफान आ जाता है और वो सारे शिष्य घबरा जाते हैं। पानी नाव के अंदर जा रहा है और एक व्यक्ति सोया है जो जीजस है, और वो उठता है और देखता है ये क्या हो रहा है। अपने शिष्यों से की तरफ देखता है और कहता है, ओ ई ऑफ लिटिल फेथ, हे कम ईमान वालों, क्या तुम ये भी भूल गए कि नाव में तुम्हारे साथ कौन है? क्यों डर रहे हो? और आकाश की तरफ इशारा कहता है और करता है पीस, शांत, और तूफान रुक जाता है। उस दूसरे वृक्ष ने सोचा था कि मैं जहाज बनूंगा और इस संसार का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो उसमें बैठेगा। इस जहाज तो नहीं बना पर बैठा कौन? I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness. I am the beginning, the middle and the end of the world. I am the alpha and omega of the world. Aham adishya madhyashya. जैसे गीता में है वैसे बाइबल में है कि मैं ही आदि मध्य और अंत हूँ इस संसार का। I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness. जो मेरे पीछे आएगा, मुझे फॉलो करेगा, वो अंधकार में चल ही नहीं सकता। वो ईश्वर पुत्र, वो सन ऑफ गॉड उस जहाज में बैठा। इस वृक्ष का स्वप्न इस तरह पूरा हुआ। तीसरा वृक्ष ने क्या सोचा था? कि मैं इतना ऊंचा हो जाऊं, इतना ऊंचा हो जाऊं कि लोग मुझे देखे तो उन्हें भगवान की याद आए, और उसके तो क्या हो गए, टुकड़े हो गए। पर वही टुकड़े जीसस क्राइस्ट सूली बनाते हुए अपने कंधों पर ले जा रहा है और फिर उसे उसी सूली पर लटका दिया गया और लोग उसे देख रहे हैं। और यही तो स्वप्न था उस वृक्ष का कि मैं कैसा वृक्ष बनूं, इतना ऊंचा कि लोग जब मुझे देखे तो उन्हें भगवान की याद आए। तो स्वप्न तो पूरे होते हैं परंतु उस रीति नहीं जिस रीति से हम सोचते हैं कि वो पूरे हो। वसुबह कभी तो आएगी, वसुबह कभी तो आएगी इन काली सदियों के सिर से, जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। ये आशा, ये होप जो व्यक्ति को जीवंत रखती है कि जो हमने सोचा है, जो स्वप्न हमने देखे, वो पूरे तो होंगे, पर वो इस रीति से नहीं होंगे जिस रीति से तुमने सोचा है। वो किसी और रीति से होंगे, जैसे इन तीन वृक्ष ने जो सोचा था वो तीनों स्वप्न पूरे हुए। और अगर देखा जाए तो कई गुना अधिक वो पूरे हुए। जिस सुबह की खातिर जुग जुग से हम सब मरमर कर जीते थे, जिस सुबह के अमृत की धुन में हम जहर के प्याले पीते थे, इन भूखी प्यासी रूहों पर एक दिन तो करम फरमाएगी वो सुबह, कभी तो आएगी। माना के अभी तेरे मेरे अरमानों की कीमत कुछ भी नहीं, मिट्टी का भी है कुछ मोल मगर इंसानों की कीमत कुछ भी नहीं। इंसानों की इज्जत जब झूठे सिक्कों में ना तोली जाएगी, वह सुबह कभी तो आएगी। ओस की एक बूंद पत्ते पर है। जापान में कविताएं होती है हाइकू, हाइकू उन कविताओं का नाम होता है। वो दो लाइन की होती है और अधूरी होती है, पर बहुत सारा उसमें राज होता है। एक कविता है, अ ड्यू ड्रॉप ऑन द लीफ, बट कविता पूरी हुई। ओस की एक बूंद पत्ते के ऊपर, परंतु परंतु परंतु। माना कि ये जीवन छोटा है, माना कि सब कुछ क्षणभंगुर है, माना कि सब कुछ ऐसा ही है, नश्वर है, फिर भी एक आश है। ऐसी ढेर सारी कविताएं है, इतनू सी है, कोई कोई तो एक ही लाइन की है बस। उसका अर्थ क्या है तुम सोचते बैठो। सुबह कभी तो आएगी, समडे। तो आशा नहीं छोड़नी है, कार्य बहुत बड़ा है। सारी सारी अव्यक्त मुरलिया, बहुत ऊंचा कार्य, बहुत महान कार्य, या फिर एकमात्र कार्य इस जीवन का। कार्यों का कार्य, द वर्क ऑफ वर्क, द होमवर्क ऑफ होमवर्क, द ड्यूटी ऑफ ड्यूटी, द एक्शन ऑफ एक्शन, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इससे ऊपर और कोई कार्य नहीं। भगवान धरती पर आया, हमने पहचाना, उसने क्या बोला वही हमें पता नहीं, तो फिर ये जीवन व्यर्थ हुआ ना। उसको समझा ही नहीं, सृष्टि के सारे राज उसने बता दिए। द एनिग्मा, द कनंड्रम, द पजल, द मिस्ट्री, द लैबिरिंथ, सब कुछ उसने समझा दिया। ये ऐसा है, ये ऐसा है, और हमें पता ही नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं। तो आज भट्टी का अंतिम दिन, 21 दिनों की ये भट्टी शुरू हुई। जैसे उस दिन भी कहा था, हर एक भट्टी के शुरुआत में हम कुछ रूल लेते हैं, कुछ नियम मर्यादाएं सेट करते हैं, और 21 दिन उनके प्रति समर्पण भाव। तो इस भट्टी की शुरुआत में भी हमने कुछ नियम बनाए थे, हर भट्टी के अपने अपने नियम। तो इस भट्टी में भी चार नियम थे। पहला था मेडिटेशन जर्नल बनाना और उसमें दिन भर का अनुभव लिखना। तो आशा है ये काम सबने किया है। और हर भट्टी की शुरुआत समर्पण से करनी है। किन के प्रति समर्पण? इन अव्यक्त वाणियों के प्रति समर्पण, इन वाणियों के प्रति समर्पण। जब तक इनके प्रति समर्पण भाव नहीं है, जब तक इनके आगे साष्टांग दंडवत नहीं करते, ये राजी नहीं होती, ये खुश नहीं होती। जब तक इनकी प्रार्थना नहीं करते थाली और दिया लेके, जब तक इनका स्तवगीत स्तवगान नहीं करते, तब तक ये खुश भी नहीं होती है। आरती देवता, ये मुरली देवता, तो इन मुरलियों के प्रति समर्पण, इन मुरलियों के प्रति धन्यवाद, तब वो राजी होंगे, तब अपने रहस्य खोलेंगे। केवल इनको देखते नहीं रहना है तो भी ये खुश नहीं होती है। आहा, कितनी सुंदर हो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अमृत है, पी लो। एक महिला किसी रेगिस्तान में भटक गई, 3 दिन से पानी नहीं, चारों तरफ दूर दूर तक रेत ही रेत, रेत ही रेत, तपती धूप, हालत खराब, परेशान, मरने को है, गिर रही है। और अचानक उसे दिखता है पानी, उसे यकीन नहीं होता है, पहले तो लगता है मिराज है, बिलो द विप्स, मृज मरीचिका, जो रेगिस्तान में अक्सर देखी जाती है, ओएसिस, बिलो द विप्स जिसको कहते हैं। उसको लगता है मिराज है, पर जाती है नजदीक थोड़ा सा हिम्मत करके, तो देखती है वास्तव में पानी है, और फिर खड़ी हो जाती है वहां पर उस पानी को देखते हुए। प्यास बहुत है, अब पानी नहीं मिलेगा तो मरने की हालत है, परंतु खड़ी है और वहां पर जल का एक सरोवर है, पी नहीं रही है। ऊंट पर एक राहगीर वहां पहुंचता है और देखता है ये क्या हो रहा है, इसकी हालत तो बहुत खराब दिख रही है और पानी सामने, फिर भी ये पीती नहीं। उस महिला से पूछता है, मैडम व्हाट इज द प्रॉब्लम, तुमको देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हें पानी की बहुत प्यास लगी हो, मरने वाली हो, फिर भी पानी पीती क्यों नहीं। वो कहती है, हाँ तुमने सही कहा, 3 दिन से पानी नहीं पिया है, मरने की हालत है, परंतु मैं ये सोच रही हूं पानी इतना ज्यादा है, मैं कब ये सारा पानी पी लूं। राहगीर नीचे झुकता है, अपने ऊंट से उतरकर उतरता है और अपने अंचली में पानी लेता है और उसको कहता है, पियो, अपनी प्यास बुझाने के लिए तुम्हें ये सारा पानी पीने की आवश्यकता नहीं है। वन सिप एट अ टाइम, वन मुरली एट अ टाइम। इतना मैं कैसे पढूं, कितनी है ये 74 में ही 31, कैसे होगा ये काम। तुमको जब ये पढ़ रहे हो तो इसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं, बस एक ही का पढ़ो, बस ये पढ़ा, बस यही जीवन है, यही सब कुछ है, आगे का सोचो नहीं। सोचो दो दो तीन तीन तो स्ट्रेस और टेंशन, उसी महिला जैसी स्थिति होगी, कब मैं पीऊं, कब होगा मेरा ये सब। अभी के लिए बस एक काफी है, अभी के जिंदा रहने के लिए एक काफी है, तो आज की ये पी लो, दैट्स इट, वन एट अ टाइम, बिट बाय बिट, बूंद बूंद से तालाब, फूरी फूरी तालाब, किसी और अर्थों में, बिट बाय बिट। गीत है ना ऐसा इंग्लिश में, बीके इंग्लिश सॉन्ग्स, बिट बाय बिट वी गो, बिट बाय बिट। तो हमने 4 नियम बनाए थे, पहला नियम था मेडिटेशन जर्नल, दूसरा था नो गॉसिप, तीसरा था साइलेंट नेचर वॉक, प्रकृति के सानिध्य में जाना, नेचर वॉक करना और अकेले करना, और जो कुछ दिखता है उसको नोट करना, पेड़, पेड़ों से दोस्ती करना है, चौथा इंटेरियोराइजेशन, भीतर प्रवेश खुद के। बाहर बहुत देख लिया, मुरली देखो पढ़ो और भीतर प्रवेश करो, मुरली पढ़ो और भीतर प्रवेश करो। तो इन चार रूल्स के साथ भट्टी की शुरुआत हुई थी। आज अंतिम दिवस भट्टी का, तो इस भट्टी में हमने कितनी मुरलियां पूरी की? 7, और 7 पर आपने एग्जाम दी 14, और 35 कितने हो गए? 49। तो 35 की आज की अंतिम ये मुरली। तीन तख्त की चर्चा है। पहला तख्त साक्षी का, दूसरा भगवान का हृदय सिंहासन, और तीसरा विश्व का, भविष्य का विश्व सिंहासन। साक्षी की साधना है। एक है बाहर साक्षी होकर देखना, विश्व को, आत्माओं को, ड्रामा को, सीन्स को, अपने पार्ट को, वगैरह वगैरह। पर सबसे पावरफुल साक्षी की जो साधना, वो है साक्षी होकर श्वास और संवेदनाओं को देखना इसी शरीर। जैसे ही श्वास की गति बदलती है, अंदर विकार जगते हैं। श्वास और विकार जुड़े हुए हैं। अभी अभी हम अगर देखें अपना श्वास कैसा चल रहा है, तो उसकी एक अपनी गति है। जैसे ही अंदर हलचल होती है, श्वास की गति बदलती है। अंदर विकार जगते ही श्वास की, अंदर हलचल, अंदर बेचैनी, अंदर दुविधा, अंदर कंफ्यूजन, अंदर भय, श्वास की गति बदलती है। साक्षी होकर इस श्वास को देखना, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। देखते देखते धीरे धीरे अपने आप मन शांत होता है। यह पहला साक्षी। और दूसरा, इस शरीर पर जो सेंसेशंस उत्पन्न हो रहे हैं, अच्छे और बुरे, सारे विकारों की जड़ तो यही है। इन सेंसेशंस से उत्पन्न होने वाले सुखद और दुखद के प्रति चिपकाव। अच्छे सेंसेशंस है, आसक्ति हो जाती है। खराब सेंसेशन है, घृणा हो जाती है, राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष। पांचों विकारों की भी जड़ ये है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, हर संवेदना अपने साथ तृष्णा को जन्म देती है। हर संवेदना अपने साथ, एवरी सेंसेशन गिव्स राइज टू अ डिजायर। ये वस्तु है, इसको खाया, विषय वस्तु इंद्रिय से टकराई, ये विषय है, ये इंद्रिय है, विषय इंद्रियों से टकराया। ये टकराने से विकार उत्पन्न नहीं होते। पुरुष ने स्त्री को देखा, स्त्री ने पुरुष को देखा, इससे विकार उत्पन्न नहीं होते। इसने उसको स्पर्श किया, उसने उसको स्पर्श किया, इससे विकार उत्पन्न नहीं होते। जैसे ही ये ये टक्कर होती है, जो टनकार उठती है, उसमें एक संवेदना का जन्म होता है। और वो दो प्रकार की है, एक सुखद एक दुखद, एक प्रिय एक अप्रिय। जो प्रिय हो गई, उसके प्रति आसक्ति हो जाती है, ये अच्छी है चीज, ये मुझे पसंद है, ये सब्जी है वो मुझे पसंद है, ये सब्जी है मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि वो अप्रिय लगी। या चुबाया कुछ, अप्रिय है, या आग है, अप्रिय है। और जो सुखद उत्पन्न हुई, उसके साथ साथ तृष्णा का जन्म होता है, और ये तृष्णा भटकाती है, ये इच्छा। ये सबसे डीप गहरा रहस्य है विकारों की। उत्पत्ति होती कहाँ है? संस्कार परिवर्तन करो पर कैसे, साक्षी हो जाओ पर कैसे, विकर्मों को विनाश करो पर कैसे। ये विकर्म, ये विकार उत्पन्न कहाँ हो रहे, किस गहराई में उत्पन्न हो रहे, वहीं जाकर उनको हटाना होगा। कि यहां हो रहा है, हम कहते हैं आत्मा मन बुद्धि संस्कार से बनी है, पर हर संस्कार संवेदना के रूप में आता है और वो संवेदना तृष्णा को जन्म देती है। इसी को साक्षी होकर देखते रहना। यहां दर्द हो रहा है घुटने में, देखते रहो, हिलना नहीं, देखते रहो उसे, वो चला जाएगा, चला जाएगा। जब तक देख सको देखो, यहां पे खुजली, यहां पे गर्मी, यहां पे सिहरन, यहां पे भारीपन, यहां दबाव, कुछ तो हो रहा है। उसे उत्पन्न नहीं करना है, उसे केवल देखना है, बस यही काम है। तो सबसे पहला है साक्षी, और साक्षी बाबा ने कहा साथी हो बाप के, तो साक्षी हो। भगवान खुद ही साक्षी है, वो कुछ भी इंटरफियर ही नहीं करता, देखते रहता है बस। ये सबसे बड़ा काम है साक्षी रहना। साक्षी साधना भी है, साक्षी परिणाम भी है। दूसरा, भगवान का दिल तख्त कौन बैठ सकता है इसमें, जो सपूत है। किसी मुरली में बाबा ने कहा था ये तख्त बहुत पवित्र है, केवल जो पवित्र है वही इस पवित्र तख्त पर बैठ सकते हैं। जो मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर है वही बैठ सकते हैं। तीसरा, भविष्य का तख्त है। तो आज की मुरली की शुरुआत कहां से, इन तीन तख्त से, इस पर बैठ के रहना है। और यह साक्षी सबसे महत्वपूर्ण तो यही है, साक्षी वाला, साक्षी होकर देखते रहना है। एक तो श्वास को, संवेदना को, ये दो हो गया। दूसरा, इस ड्रामा को, आत्माओं को, स्वयं के पार्ट को, जो कुछ हो रहा है यहाँ पर। कल भी कहा ना, ये साइड सीन्स है, छोटी छोटी बातें हैं, मनोरंजन, मूंझना नहीं है, विस्तार नहीं करना है, उसका प्रभाव में नहीं आना है, समय नहीं गंवाना है। बातें आई, बातें चली गई, बड़ी बात को छोटी और छोटी को खत्म करना, ये बुद्धि पर निर्भर है। उनको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना है। हम सोच सोच के उन बातों में अपनी सकाश देकर उन्हें शक्तिशाली बनाते हैं, उनमें जान फूंकते हैं, उनको ऊपर सोच कर। बातें आई चली गई, हजारों बातें हर एक के जीवन में आती रहती है, आती है जाती है, आती है जाती है, किस किस का हिसाब रखे। आई और गई, आई और गई, उसमें प्रवाह है, दे आर इन फ्लक्स, लेट देम फ्लो, फ्लोटिंग है वो, होल्ड नहीं करो, वो चला गया। इंग्लिश में कहावत है, यू कैनॉट स्टेप इन टू द सेम रिवर ट्वाइस, यू कैनॉट पुट योर स्टेप इन टू द सेम रिवर। नदी बह रही है, पैर रखा, पैर उठाया, फिर रखा, पर नदी बदल चुकी है, पानी बदल गया है, पानी तो बह गया, अब वही पानी है क्या? पैर रखा, उठाया, फिर पानी, पैर रखा, क्या ये वही हॉल है जिसमें हम कल बैठे थे? क्या ये वही है क्या? सब बदल गया है, सारा प्रकंपन से भरा हुआ है, बना हुआ है सब कुछ, सारे प्रकंपन बदल गए, व्यक्ति बदल गए, लोग भी बदल गए। जो कल थे आज थोड़ी ना है, उस सीट पे कल सुशील भाई बैठे थे, आज थोड़ी बैठे है वो, कल वाले जो थे आज थोड़ी ना है। पल पल बदल रहा है सब कुछ, प्रकंपन प्रकंपन बदल रहे, सूक्ष्म शरीर बदल रहे, जब तीन लोग किसी कमरे में होते हैं, तीन लोग थोड़ी होते हैं, नौ होते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति में तीन है, एक तो वो जो है वो, दूसरा वो जो सोच, दो जो वो बनना चाहता है, तीसरा वो जो दिखाता है। एक में तीन भरे हैं, तो कमरे में तीन नहीं नौ है, यहां कितने लोग हैं? टोली अर्थात होमवर्क, तो तीन तीन, अच्छा ये कहना चाहते थे आप, ठीक है। होमवर्क और क्लास वर्क, ये दो अलग अलग काम है। क्लास वर्क में होमवर्क नहीं करना है, क्लास वर्क अलग, होमवर्क अलग, क्लास में क्लास वर्क। तो कल की मुरली में बाबा ने अमृत वेले की कितनी बातें सुनाई थी। अमृत वेले कुछ कुछ बच्चों का पहला इंस्टेंट कनेक्शन जुड़ जाता है, दूसरे बच्चे जो है जिनका कनेक्शन लेट जुड़ता है, तीसरे जो है उनका कनेक्शन देरी से जुड़ता है, चौथे वो है जिनका कनेक्शन माया से जुड़ता है, और फिर उसके बाद में कुछ सहयोग की अर्जी डालने वाले, उसके बाद में कुछ बच्चे हैं जो बाबा की महिमा ही गाते रहते हैं, बाबा को अपनी महिमा और उसके कर्तव्यों की याद दिलाते हैं। सातवां नंबर वो बच्चे हैं जो हथियार निकालते हैं, ढाल तलवार, परंतु तीर निशाने पर नहीं रखता। और आठवें वो बच्चे हैं जो निद्रा और योग दोनों को एक ही कर देते हैं, समझते दोनों एक ही है। ऐसे ये आठ और पांच प्रकार की अमृत वेला अर्जी, ये दिन भर की लाइनें हैं क्यू, और पांच प्रकार की अर्जी डाल, पांच प्रकार के क्यू लगती है दिन भर में। सबसे पहली क्यू है अर्जी वाली, दूसरी क्यू है कंप्लेंट्स वाली, तीसरी क्यू है यू उल्हाना वाली, और चौथी क्यू है बाप को ज्योतिषी रूप में देख रहे और बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे। आज इन प्रश्नों का उत्तर है। ऐसा बहुत कम होता है कि एक मुरली चली जिसमें प्रश्न पूछे गए और फिर दूसरी मुरली चल रही उसमें उसके उत्तर दिए गए। कभी कभी होता है ऐसा, कहते तो है मैं दूंगा बताऊंगा अगली बार, पर वो अगली बार फिर कभी आता नहीं। इस बार आया है, जो पहली मुरली में बाबा ने जो प्रश्न पूछे, और पांचवा रॉयल मांग। तो अमृत वेला सारे दिन भर ये पांच क्यू और वो आठ बातें अमृत वेले की जो हमने कल देखी थी। तो इस मुरली में बाबा ने क्या बताया उसके उत्तर, जो हमने कल ढेर सारे प्रश्न देखे थे। तो सबसे पहला क्या है, अर्जी, बहुत सारी अर्जी जो कल देखी थी, तो इसमें बाबा ने उसका उत्तर दिया है। तो उत्तर भी ऐसा दिया है खतरनाक, प्रश्न पूछने वाले पर ही बाउंस कर दिया प्रश्न। ये सबसे बेस्ट विधि है अगर भाषण दे रहे हो, एक भाषण की एक ट्रिक। अगर कोई प्रश्न पूछ ले अचानक से बीच में तो क्या करना, अरे कोई बता सकता है इसका उत्तर, कोई भी बताओ, ऐसे ऑडियंस में फेंक देना, तब तक सोचने के लिए थोड़ा मौका मिल जाता है। ये युक्ति है। तो बाबा ने कहा भिन्न भिन्न प्रकार की अर्जी डालते, ये दे दो ये दे दो, ऐसी अर्जी डालते हो तो ये याद नहीं आता है कि बाप दादा बच्चों को स्वयं से भी ज्यादा हर कार्य में आगे रखते हैं। तो बाबा को क्या क्या कहते हैं, बुद्धि का ताला खोल दो, ये खोल दो। जब सर्वशक्ति या पावर्स बच्चे को, बच्चों को दे दिए, तो बालक समाधि अर्जी क्यों डालते हो, पहली बात तो डालते क्यों हो, ये है उत्तर। पहला था ना एप्लीकेशन, तो पहले तो तुमको इतनी शक्तियां दे दी तो तुम पूछते क्यों हो, तुम्हारा तो सवाल ही गलत है। दूसरा, जैसे बाप बुद्धि का ताला खोल सकता है, संस्कार बदल सकता है, तो क्या आप लोग ये नहीं कर सकते, इतना भी नहीं आता है तुमको। यही प्रश्न था ना कल, पति का ताला खोल दो, सास का क्रोध कम कर दो, मेरी बुद्धि का ताला खोल दो, रिश्तेदार की बुद्धि का ताला खोल दो। बाबा कहते हैं ये तुमको खुद नहीं करने आता है, जो मुझे बताते हो। बाप दादा ने तुम लोगों को अनुभव ही बनाया है, जैसे बाप ने तुम्हारा खोलो तुम दूसरों का खोलो, खत्म। ताले की चाबी कौन सी है, सर्वशक्ति है जो तुमको दे चुके है। अपनी पर्स में देखो, अपनी बैग में देखो, पर्स है ना सबके पास, सब पर्स बैग, उस बैग में सारी शक्ति है, वो बैग आपकी, हाँ उसके अंदर है क्या, देखो एक बार है, सारी शक्तियां तुम्हारे पास दे दी है। नो डोंट आस्क, ये चाबी है। यह है उत्तर सभी प्रश्नों का, और दिव्य दृष्टि की मेरे पास है, पर उसकी तुमको जरूरत भी नहीं है। कल भी पूछा ना संडे में, कल शाम को ये तुमको दे दूं क्या फायदा, उससे क्या होगा, ज्योतिबिंदु का साक्षात्कार उससे क्या होगा। दूसरा उल्हाना, बाबा ने कहा तुमने इतने सारे जो कल प्रश्न पूछे ना जो हमने गिना है, उल्हाने तब देते हो जब तुम नॉलेजफुल नहीं हो, मतलब मास्टर नॉलेजफुल और त्रिकादशी स्थिति में स्थित नहीं हो, इसलिए उल्हाने दे रहे हो बाबा को, तो प्रॉब्लम तुम्हारा है, नॉलेज की कमी है, लाइट माइट की कमी है। तीसरा फिर है कंप्लेंट्स, वो ज्योतिषी वाला और वो रॉयल मांग वाला छोड़ दिया, वो इसमें समाया हुआ है, और मुख्य कहा कि दो ही मुख्य कंप्लेंट है, पहली कंप्लेंट तो है व्यर्थ संकल्प और दूसरी कंप्लेंट है कौन सी कंप्लेंट है दूसरी, चंचल होती है, ये दो कंप्लेंट है। और इस पर फिर मुरली का विस्तार है, ये जो व्यर्थ संकल्प है ये भी क्यों आते हैं और कैसे इसे दूर करो। इसका मतलब रोज की जो साकार मुरली है उसमें जो डायरेक्शन आते हैं उसका चिंतन नहीं कर रहे, उसका मनन नहीं कर रहे, उसके बारे में सोच नहीं रहे हो। इस साकार मुरली का क्या करना है पहले थोड़ा सा ये देखते हैं। उसको दो बातें करनी है, एक तो एक बार वो पूरी एक बार सुन के होनी चाहिए, वंस लिसनिंग, और एक बार पढ़ के, बस एक एक बार ये होना चाहिए काम, एक बार सुन के और एक बार पढ़ के। उसमें से पॉइंट्स उठा लेने, जो नए नए पॉइंट्स है, जो एकदम नए जैसे लग रहे हैं, जैसे परसों परसों था शायद ना, ये नया पौधा है, पवित्र पौधा है, कुछ तो नया मिल गया, कुछ तो नई पॉइंट आ गई, उसको पकड़ लो और उठा लो और उसके बारे में सोचो। कल की मुरली नेति नेति, वो संसार के लोग नेति पर, पाया किसने, तुम भोली माताओं ने, तुम भोली आत्माओं ने, तुम साधारण आत्माओं ने, तुम गरीब आत्माओं ने। वो अरब खरब पति निवास नहीं है, वो गरीब निवास है। तो कुछ ना कुछ नया है हर मुरली में, उसको क्या करना है, उठा लेना है, चिंतन कर लेना। बाबा ने कहा तुम्हारे तीन कर्तव्य है, क्या तीनों कर्तव्य हो गए क्या? एक तो ज्ञान का सिमरन करना, विकर्मों का विनाश और विश्व का कल्याण। जो इतने आराम से बैठे हो, जो सोचते हो तुम्हारा माइंड फ्री है अब क्या करूं, ये सारे काम हो गए तुम्हारे, विकर्म विनाश हो गए, विश्व का कल्याण हो गया या मुरली का सिमरन हो गया, ये तीनों काम नहीं हुए और फिर व्यर्थ खाली बैठे रहते हो और फिर पूछते रहते हो। तुम जिम्मेदारी का ताज पहनो, यहां तख्त बोला और ताज और तख्त दोनों, टाइम कैसे है तुम्हारे पास, वही तो समझ नहीं आ रहा है। इतना टाइम कैसे है जब इतने तीन बड़े बड़े काम तुम्हारे बाकी है। तो आज का होमवर्क नंबर वन, ब्राह्मणों के बचे हुए कर्तव्य कौन कौन से है, द पेंडिंग ड्यूटीज ऑफ ब्राह्मिन्स, ऐसे कौन से काम है जो अभी भी बाकी है। वो ये मत बता देना मेगा प्रोग्राम करना है, सेंटर बनाना है, रिट्रीट, ये वाले नहीं है, बड़े वाले बताना, थोड़े बड़े वाले कार्य, कौन से कार्य है ऐसे, कार्य से जब भी ज्यादा शब्द प्रयोग करो कर्तव्य, कौन से कर्तव्य है अंडन है जो अब तक अनफुलफिल्ड है अब तक। अनफिनिश्ड है अब तक, अधूरे है अब तक, हाफ डन है अब तक। तो इसके बारे में सोचना, और कहाँ जाके सोचना, एकांत में, प्रकृति में, छत में या बाबा के कमरे में बैठकर, खटिया के नीचे जाके, कौन से कर्तव्य है मेरे जो बचे हैं, जो पेंडिंग है, अधूरे काम। रोज की मुरली द्वारा जो डायरेक्शन मिलती रहती है, उन डायरेक्शंस को अर्थात मुरली को ध्यान से सुनकर और धारण नहीं करते। व्यर्थ संकल्प चलने का मुख्य कारण यह है। जो ज्ञान का खजाना हर रोज जो बाप द्वारा मिलता है, उस खजाने की कमी है। अगर सारा समय ज्ञान रत्नों से खेलने में और ज्ञान खजानों को देखने में, सुमिरन करने में बुद्धि को बिजी रखो, तो क्या व्यर्थ संकल्प चल सकेंगे? मतलब यह प्रूफ है कि तुम ज्ञान से बहुत दूर हो। पहले अपने आप से पूछो, क्या क्या मेरी बुद्धि सारा दिन ज्ञान के सिमरन में, विश्व कल्याण के प्लान बनाने में बिजी रहती है? तो इस मुरली में और एक काम भी कहा है कि अपना प्लानिंग करो, अमृत वेले के बाद टाइम टेबल बनाओ, ये होमवर्क है। बुद्धि फ्री रहती है ना, उसने सब गड़बड़ कर दी है। छोटे छोटे क्लर्क भी अपना टाइम वेस्ट, अपना टाइम टेबल बनाते हैं। तो ये रोज अमृत वेले की बात करो, व्यवहार के साथ परमार्थ का भी टाइम टेबल बनाओ, अपना टाइम टेबल सेट करो, वह स्वयं ही स्वयं को शिक्षक बन, स्वयं को होमवर्क दो। ये याद रखना, निखिलेश भाई ध्यान से अभी जो बोला। जैसे शिक्षक स्टूडेंट को होमवर्क देते हैं, इसमें बुद्धि बिजी रहती है, इस प्रकार रोज अपने आप को होमवर्क दो और फिर साक्षी होकर चेक करो कि होमवर्क में बिजी है या माया के आकर्षण में होमवर्क भूल गए। कईयों ने इस बार होमवर्क छोड़ ही दिया है, मतलब लास्ट टाइम हमने किया था, ट्रॉफी मिल गई, अभी नहीं करना है। एक बार हमने किया, अभी बार बार थोड़ी करना होता है। होमवर्क में बिजी है या माया के आकर्षण में होमवर्क भूल गए। ये होमवर्क इसलिए है ताकि बुद्धि बिजी रहे, नहीं तो इस संसार में इतनी माया की पूछो मत। एक घंटा कहाँ चला जाता है व्यक्तियों का पता ही नहीं चलता है। दो दो सेकेंड के शॉर्ट्स, यूट्यूब रील्स एंड इंस्टा के, इंस्टा रील्स एंड यूट्यूब शॉर्ट्स, उसमें बैठे रहते देखते रहते हैं, जोक्स, कॉमेंट्स, लाइक्स, पति पत्नी के जोक्स, कुछ ना कुछ आते ही रहता है। एक एक से दो दो मिनट का, एक एक मिनट का, दो दो मिनट का, एक घंटा गया दस दस सेकेंड के। और ये बुद्धि को एकाग्र होने से, ये बुद्धि का शत्रु है। बुद्धि की जो एकाग्रता है वो नष्ट हो जाती है, और बुद्धि को एक आदत पड़ जाती है नई नई चीजें देखने की। कोई एक चीज अगर उसको कहो ये 8 पेज की मुरली पढ़ो, अब ये नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आदत कौन सी पड़ी है, ये यूट्यूब शॉर्ट्स एक बहुत बड़ा एडिक्शन है, क्योंकि उसको देखने की आदत है। वो फट से खत्म हो जाए दूसरा, वो खट से खत्म हो जाए दूसरा, और ये तो खत्म ही नहीं होती। और इसमें ना तो कोई जोक है ना तो कोई कुछ आता है, ये 8 पेज की आती है बिल्कुल सीधा जो चालू होती है। इसके बनाओ शॉर्ट्स, फिर इसकी बनाओ रील्स, इसमें लाओ नवीनता। पर इसमें तो क्या, इसमें खुद करना पड़ता है, वहां बना बनाया थाली पर परोसा जा रहा है रेडीमेड। इसमें तो कौन बनाए, बनाने वाले को कितनी एकांत और कितना चिंतन करना पड़ता है। एक मुरली का अध्ययन करने के लिए कितने घंटे लग जाते हैं। दिन भर में पता नहीं क्या क्या देखते रहते, रेसिपीज, टाइम वेस्ट। उसको स्टॉप करो तुरंत। अपना टाइम टेबल सेट करो और स्वयं ही स्वयं को शिक्षक बन। निखिलेश भाई सुना ना, स्वयं को होमवर्क दो। दूसरा ये था, व्यर्थ संकल्प चलते हैं क्योंकि चिंतन नहीं है। चिंतन करो, मनन करो, अध्ययन करो, धारण करो। दूसरा, वृत्ति चंचल होती है। तो पहला कारण है क्योंकि संपन्न नहीं हो। कोई चीज हिलती क्यों है, अधगल गगरी छलकत जाए, आधी भरी हुई है, इसलिए तुम पूरे नहीं हो, इसलिए दृष्टि चंचल होती है, शरीर की तरफ बुद्धि जाती है। विस्मृति की मार्जिन है, हिलती है इसलिए। और भक्ति मार्ग में स्लोगन था बुराना देखो सुनो, वो सब है ना, इसमें बाबा ने कहा है ना देखो ना सोचो ना सुनो। देह को देखना अर्थात बुरा देखना, शरीर को देखना, ये सारी एड्स, ये सारी मूवीज, इसमें शरीर का ही की ही नुमाइश है, शरीर को ही दिखाया जाता है, शरीर के इर्द गिर्द ही सब घूमता है। देहधारी प्रति सोचना संकल्प करना ये बुरा, देहधारी व देहधारी समझ उससे बोलना ये बुरा, बाबा ने कहा भी इसको बुरा समझो। और जिस समय दृष्टिवृत्ति खराब होती है उस समय कौन सा सामान लेना है, रव रव नरक वासी हूं, विष्टा का कीड़ा हूं, जिम्मेवार नहीं जमादार हूं। और एक बात कि मेल समझो, कोई मेल की फीमेल की तरफ दृष्टि जाती है या फीमेल की मेल की तरफ जाती है, तो क्या बाप सर्व रूप धारण नहीं कर सकता। साजन व सजनी के रूप में भी बाप से सजनी बन व साजन बनकर अतीन्द्रिय सुख का जो रस सदा सदा काल स्मृति में और समर्थि में लाने वाला है, वह अनुभव नहीं कर सकते। तो कुमार बाबा को क्या समझेंगे आज से? सजनी। बाबा कौन है? सजनी, गर्लफ्रेंड। वो कुमारिया, उनके लिए तो आसान है थोड़ा। साजन, साजन। तो कोई गर्लफ्रेंड की तरफ बुद्धि नहीं जाएगी। तो सामान क्या दिया? विष्ट का कीड़ा और नरकवासी जमादार। ये तीन बातें याद रखना, और भी बहुत है। सुनो, अपना एक फोटो निकालो, आज ही निकाल के रखना। इसमें निकाला नहीं, वो ग्रुप में भेजेंगे निकाला हुआ। टोकरी उठाते हुए, टोकरी में क्या है? गंदगी। जैसे कोई गंदगी उठाने वाला हो, टोकरी पर टोकरी गंद का उठाया, ऐसा चित्र निकालो, अपना एक फोटो निकालो, सेल्फी। ऊपर टोकरी, एक तरफ ये चित्र, एक तरफ मास्टर सर्वशक्तिवान का चित्र और एक तरफ ये। जब दृष्टि और वृत्ति चंचल होती है, उस समय यह फोटो देखो, मैं क्या कर रहा हूं, क्या उठा रहा हूं। तो ये फोटो बनाना आज। मस्तक में मणि की बजाय अगला, सांप को क्यों देखते हो जिससे विष को प्राप्त हो? ये शरीर क्या है? सांप, और सांप में विष होता है। भूल गए क्या? सांप में विष होता है, वो सांप तो काटने से विष घुसता है, और ये सांप देखने मात्र से अंदर प्रवेश करता है, इसलिए नजर नीचे। इसमें नहीं है वो। हाँ, डाउन कास्ट आइज। फिर बाबा से और एक प्रश्न पूछा है कि वातावरण ही ऐसा क्या है, क्या करे? दफ्तर में काम करते हैं, बिजनेस में काम करते हैं, संपर्क में आना पड़ता है। बाबा का उत्तर है, संपर्क में आते, बातचीत करते, मस्तक के सिवाय और कहीं देखते ही क्यों? टेल मी व्हाई। ठेका रखा रखा है तुमने पांच तत्वों को बदलने का, वशीभूत, तो फिर वातावरण की क्यों हो जाते हो? उदाहरण अगरबत्ती का अंतिम, वशीभूत होती है क्या? नहीं। इसलिए आप स्वयं को पावरफुल बनाओ, नॉलेजफुल बनाओ। यह है मुरली। तो क्या सुना? उलाने, ज्ञान की कमी है इसलिए उलाने, इसलिए ज्ञान को बढ़ाओ। नॉलेजफुल बनो, मास्टर ज्ञान सूर्य बनो, त्रिकालदर्शी बनो। अगला, कंप्लेंट्स बहुत सारी है तो खुद ही बुद्धि का ताला खोलो, इधर मत पूछो। शक्तियां तुमको दे गई, दे दी है। फिर वृत्ति चंचल, वृत्ति ये व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो ज्ञान को बढ़ाओ, और वृत्ति दृष्टि चंचल होती है तो ऐसा फोटो निकाल के रखो, ये याद करो, मैं इस समय कौन हूं, क्या हूं, और बाबा से सारे रस, सारे संबंध। तो वो कौन है आज कुमारों के लिए? सजनी। ठीक है, तो इन 35 मुरलियों का क्या करेंगे? वो दरवाजा बंद कर दो, कोई भागने ना पाए। पहले ये बताओ, कल यहां कौन कौन है? कल जो यहां है, हाथ ऊपर, सब सब जो भी यहाँ कल रुकने वाले हैं, जो आज जाने वाले हैं वो छोड़ के। निखिलेश भाई, आप कहाँ जा रहे हो? विदेश? हाँ, इधर ही है ना बस। तो आपको क्या करना है, 35 मुरलियाँ है, ठीक है, 74 की और 76 की, आखिरी सात छोड़कर, आखिरी सात छोड़कर जो बची हुई मुरलियाँ है। तो यहाँ कल टेस्ट नहीं होगा, रिवीजन, दो दिन में 35 मुरलियां रिवाइज करनी है हमको। तो उसको क्या करेंगे, तो कल कम से कम 8 लोग और उसके परसों 9 लोग। तो सुशील भाई, कल आपको एमसीक्यू बना के लाने हैं, फर्स्ट मुरली पे 23:174 लिख के रखो, 5 MCQs, एक प्रश्न 4 उत्तर, 2 मुरलियों से, 23:174, 25:174। दूसरा, पुरुषोत्तम भाई आपको 2 मुरलियों से 5 MCQs बना के लाने हैं, 28:132। विट्ठल भाई आपको 2 मुरलियां 2:62:20 से कितने MCQs लाने हैं, 5। आशीष भाई ये 2 मुरली आपको पढ़नी है, इसमें से MCQ बना के लाने हैं। MCQ बनाना मतलब प्रश्न और जिसके 4 उत्तर, मतलब आपको प्रश्न पेपर सेट करने की प्रैक्टिस करनी है। 15:4, 24:4 निखिलेश भाई, 28:4, 2:5 ये 74 का चल रहा है सब। मनी भाई 16:5, 25 कितने लोग हो गए, 5, 2 मुरली से 5 MCQs कितने कितने लोग हो गए, 6 ना, 6 हो गए। अरविंद भाई 23:5, 27:5 रविनेश भाई 30:5, 18:6 कितने स्पीकर्स हो गए, 8 हो गए, जिनका जिनका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो कल 8 स्पीकर भाई, कल बहने, परसों बहने, वो 9, ठीक है, तो वो आज अभी दे कि बाद में दे, नहीं अभी देंगे तो वो उतना ही पढ़ेंगे बस, कल का नहीं पढ़ेंगे। तो चलो अभी बता दे अगला, ये हो गया कल का, परसों का दीपाली बहन 21:6, 24:6 समीक्षा बहन 26:6, 36 क्रांति बहन 36:47 गायत्री बहन 8:7, 11:7 वो 7 आधे के बाद बताना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बस इतना पूरा हुआ यहाँ पर, ठीक है। एक आपको 77 की है और एक देंगे 74 की है और दूसरी अभी 76। 9170 ये 75 की नहीं चाहिए, अच्छा इसमें 76, ओके ओके, वेट 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 18176 ठीक है, 219। उसके बाद में अभी कितनी बची है मुरलियाँ, फिर 22:176, 21:176 डॉक्टर रम्या बेन 22 मतलब 22, अच्छा वो 22:1, 22:1 Part 1, Part 2 दो है उसमें, ठीक है। उसके बाद में डॉक्टर खुशी, हाँ वो ये दूसरा पार्ट टू है, ये जनवरी का है, वो लास्ट वाला है, पार्ट टू इसमें बहुत सारे है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 1, पार्ट 2 डॉक्टर खुशी 23:1, 23:1 पार्ट 1, पार्ट 2 प्रियंका बहन 24:1, 25:1 24:1, 25:1 उसके बाद में शिवानी बहन का लिख के रखो 27 जनवरी 28 जनवरी 27 जनवरी 28 जनवरी पहले तो ये अध्ययन करना है, मुरलिया छोड़ो, मुरलियों को बाद में देखेंगे। उसके बाद में अगला गाय अपना त्रिवेणी बहन 1276 ये कौन लिख के रखेगा, यहाँ दिख नहीं रहे, त्रिवेणी बहन 1276 उसके बाद में 2276 3276 मंजू बहन, और कोई बहनों में इधर रुकने वाले हैं परसों, अरे माता जी है ना ये द्वारका माता, द्वारका माता 6272 76 6 to 76, 7. परसों कौन पहने हैं बता दो, कोई है इधर परसों? हाँ डॉक्टर दिव्या और यस यस 27282। अरे नहीं 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 एक मिनट, ये तो इसमें चले गए हम। एक मिनट, सात को हटाना था। वेट। हाँ पर ये हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7। एक मिनट, एक एक कर दो उन दोनों को, क्योंकि ये बाकी लोग आ गए स्पीकर्स। हाँ, नहीं उसके पहले भी किसी को एक कर दो। समीक्षा बहन को दे दिया ना ऑलरेडी, यशोदा बहन को कौन सा बचा है? तो ये एक एक कर देते हैं इन लोगों को, फिर से रिवाइज को, फिर से आ जाओ वापस बहनों का, वापस। वेट, डिलीट डिलीट फॉर ऑल। वेट, इंपॉर्टेंट काम है। फिर से चालू करो, कहां से था पहला? गायत्री बहन पहले, आपका कौन सा है? इनका एक ही करो, 21 6 70। हाँ मैं 76 का लेके हूँ, आप 74 पे है, 74 वाला एक। ए, खाली स्पीकर्स और एक एक करनी है सबको। एक दूसरा डॉक्टर रम्या, हिंदी में इंग्लिश में बताओ। समीक्षा बहन वो मेरे पास दूसरी बुक है अभी, ये है इधर पर, वैसे ही बताओ। अगला, हाँ तो 30 वाला आप आगे दे दो। अच्छा एक एक ही लेनी है आप लोगों को, और एक में से 5 MCQs बनाने हैं, फटाफट। ठीक है, पहले नाम लिख लो पेनों के और फिर डेट्स बाद में। 1 2 3। हाँ ये क्रांति बहन, गायत्री बहन आ गया, गायत्री बहन, डॉक्टर खुशी, प्रियंका बहन, त्रिवेणी बहन, मंजू बहन, द्वारका माता, यशोदा बहन और रम्या बहन। हो गया सर, डॉक्टर दिव्या। तो ये सबको एक एक मुरली आप ले लो, कितनी बची है वो देख लो, एक के बाद एक ले लो सारी। चलो मैं ही दे देता हूँ, कहाँ से बचा था बताओ? 12 हो गए ना, 21 6 74, और 1 2 3 4 5 6 7। हाँ दीपाली बहन का 21 6। अगला आप नाम बताओ। 24 6 74, उसके बाद में 26 6 74, उसके बाद में 36 74 6 36 36 74, उसके बाद में 36 74 पार्ट टू। हाँ उसके दो पार्ट है, पार्ट टू कोई भी 36 74 36 74, पार्ट वन पार्ट टू, उसके बाद में 4 7 74। कौन है? मंजू बहन। उसके बाद में अब वो छोड़ो, उसके बाद में 8 7। उसके बाद में 11 7 74, ये पूरा हो गया। फिर दे दिया ना अभी इसके पहले, अभी कंफ्यूजन मत करो पर रुको। नेक्स्ट अभी 76 पे आ जाओ, 18 1। कौन है स्पीकर? 18 1। दूसरा 22 1, उसके बाद में 22 1 वापस पार्ट टू, उसके बाद में 23 1। कौन है? उसके बाद में 23 1 वापस पार्ट टू। हाँ उसके बाद में द्वारका माता 24 1, उसके बाद में 21 25 1। प्रियंका बहन को दिया है, अब पहले नहीं गया ना अभी तक। नेक्स्ट कौन है स्पीकर आपका? प्रियंका बहन को डालो 25 1, ये फाइनल है आपका 25 1। फिर उसके बाद में और कौन है बहनों में? शिवानी बहन को अभी डालो 27 1, जनवरी, फिर उसके बाद में तीन और चाहिए। बहनों में कोई रुकने वाले हैं परसों? न्यू कमर्स, न्यू कमर्स। क्वेश्चन निकालने हैं, चार उत्तर बनाने हैं, मेहनत का काम है। परसों कौन रुकने वाला है? गीता बहन रुकने वाले है क्या इधर? नहीं रुकने वाले हैं। और परसों ये तीन मूल्यां लिख लो एक्स्ट्रा, 28 एक, एक दो और दो दो, एक दो दो दो, पार्ट वन। ये तीन बचे हुए हैं, तो कौन रुकने वाला है? आप बहन जी, आप रुकने वाले परसों? आप रुकेंगे? आपको ही बोल रहा हूँ। हाँ आज ही जा रहे हैं, परसों कौन रुकने वाला है? और इधर कौन बचा हुआ है? हाँ भाई बचे हैं ना अपने, ये है ना सुखदेव भाई। अरे रुको, सुखदेव भाई को डालो एक इसमें। सुखदेव भाई बचे हुए हैं, और ये इनका तो हो गया, और कौन बचा हुआ है? हाँ दे दिया, देवेंद्र भाई, देवेंद्र भाई को डालो, दो डाल दो। एक चिमन भाई को डालो, एक देवेंद्र भाई को डालो, बस डन 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 डन। चलो इसको पोस्ट कर देंगे नाम सहित। रविनेश भाई योर वर्क, ठीक है। तो ये काम है, तो दो दिन दिन रात पढ़ाई करनी है, ठीक है। आप पूछेंगे फटाफट, आप आओगे, आपके पास पांच प्रश्न रहेंगे, एक प्रश्न चार उत्तर, एक प्रश्न चार उत्तर, और वो बहुत रेलेवेंट होने चाहिए। चिंतन करके प्रश्न बनाने, ऐसे ही प्रश्न नहीं बनाने, अच्छे वाले प्रश्न, ठीक है। और अगर हो सके तो ये सारे प्रश्न, कितने प्रश्न हो जाओगे जाएंगे, इतने 100 के ऊपर हो जाएंगे, वो सारे हम ग्रुप में पोस्ट करे कर सके ऐसे टाइप करके लाओ तो अच्छा है, रिटर्न नहीं लाना है, टाइप टाइप। मोबाइल के एक प्रश्न चार उत्तर, जैसे आपको आता है वैसे ही, जो उत्तर आते हैं ना, एक एक मुरली के पांच पांच बनाएंगे सभी। हाँ आपके दो के पांच है, जो भी है। इन काली सदियों के सिर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंग अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगा, वो सुबह हम ही से आएगी। गीत था वो सुबह कब आएगी, ये गीत है, वो सुबह हम ही से आएगी। जिस सुबह की खातिर जुग जुग से हम मर मर के जीते थे, जिस सुबह की अमृत की धुन में हम जहर के प्याले पीते थे। अच्छा, इस भूखी प्यासी रूहों पर एक दिन तू करम फरमाएगी, वो सुबह हम ही से आएगी। ओम शांति।
इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह हमी से आएगी, वो सुबह हमी से आएगी, वो सुबह हमी से आएगी, वो सुबह हमी से आएगी। जिस सुबह की खातिर जुग जुग से हम सब मर मर के जीते हैं, जिस सुबह के अमृत जहर के प्याले पीते हैं, इन भूखी प्यासी रूहों वो सुबह हमें से आएगी। के अभी तेरे मेरे अरमानों की कीमत कुछ भी नहीं। मिट्टी का भी है कुछ मोल मगर इंसानों की कीमत कुछ भी नहीं। इंसानों की इज्जत जब झूठ है सिक्कों में न तोली जाएगी। उस सुबह हमी से आएगी, वो 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 सुबह हमी।